राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे।
तो आप सबका धन्यवाद, पिचेज रेफियर के भक्तों का। कल 13 तारीख को रक्षाबंधन था, तो रक्षा का अर्थ होता है कोई हमारी रक्षा करे, प्रोटेक्शन। और बंधन का मतलब है एक छोटा सा धागा बांधते हैं जिससे हमारी रक्षा हो। हाँ, इसका नाम क्या है त्यौहार का? रक्षा बंधन। इसका दूसरा अर्थ ये है जो हमारे रक्षा करने के लिए अपने आप को कहे कि मन में बंधा हुआ हूं, मैं आपकी रक्षा करता हूं इसलिए मैं बंधा हुआ हूं। अब मेरा ये आपसे प्रश्न है कि किसको रक्षा की जरूरत होती है? जो कमजोर होता है, रक्षा को किसको रक्षा करनी चाहिए? जो कमजोर होएगा, जो वीक होगा उसको रक्षा की जरूरत है। तो रक्षा कौन करेगा? जो शक्तिशाली होगा। रक्षा कौन करेगा? जो शक्तिशाली होगा। तो शक्तिशाली कमजोर की, दुर्बल की रक्षा करता है, उसको रक्षाबंधन बोलते हैं। तो कौन है शक्तिशाली दुनिया में? सारी शक्ति का स्रोत बलराम जी है। नाम ही बल है, बलदेव। वो देव जो बल का स्वरूप है, जो बल की मूर्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको बलराम कहते हैं। वो हमारी रक्षा का भार अपने ऊपर लेता है। कब? जब हम उनकी कृपा से कृष्ण का नाम लेना चाहते हैं। पहले जमाने में 50-100 साल पहले, 100 साल पहले रक्षाबंधन के दिन साधु ब्राह्मण वैष्णव गुरुजन अपने शिष्यों को रक्षा बांधते थे कि तुम्हारी रक्षा होगी। वो भगवान की कृपा का, रक्षा का सूत्र अपने भक्तों के हाथ में बांधते थे कि अब आप भगवान की शक्ति से भक्ति करो, अपना जीवन सफल करो। हर साल इस उत्सव पे ऐसे रक्षा कौन बांधता था? साधु, गुरु, वैष्णव, ब्राह्मण किसको बांधता था? अपने शिष्य को, अपने भक्तों के हाथ में रक्षा बांधते थे। तो भगवान बलराम की कृपा से भक्तों की रक्षा होती थी, और रक्षा वो गुरुजनों के द्वारा, साधुओं के द्वारा होती थी। अब रक्षाबंधन क्या हो गया? कमजोर बहन जिसको खुद को रक्षा की जरूरत है, वो शक्तिशाली भाई के हाथ में रक्षा बांधती है। उल्टा हो गया ना? नहीं, उल्टा हो गया। बांधनी तो भाई को चाहिए कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, होना ये चाहिए। नहीं, ये कैसे हो गया पता है? ये त्योहार ऐसे कैसे बदल गया? वैसे कहते हैं ब्राह्मणों का, साधुओं का त्योहार रक्षाबंधन है। उस दिन वो नीचे उतर के आते हैं अपने तप से, योग से, भक्ति से, और फिर अपने शिष्यों का, राजाओं का, प्रजा का रक्षा के लिए सूत्र बांध के फिर चले जाते हैं फिर तपस्या करने। तो अपनी शक्ति इकट्ठी करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। दशहरा जो अभी आएगा, दशहरा, भगवान श्री राम ने जिस दिन रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी उसको दशहरा कहते हैं। वो दशहरा क्षत्रियों का बहुत बड़ा त्यौहार होता था। क्षत्रिय लोग अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे दशहरे को कि हम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो दशहरा असल में क्षत्रियों का पूजा का त्यौहार है, अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे। दिवाली वैश्य का त्यौहार है, लक्ष्मी को घर में लाके गिन गिन के नोटों को लाल रंग लगाते थे। ये वैश्यों का त्यौहार है, उस त्यौहार को विशेष रूप से धनी लोग मनाते हैं, भक्त लोगों को उसके लिए समय नहीं, भक्तियाँ करेंगे पैसे को, भले आप इकट्ठा करो पैसा, हमको अब तो दे के जाओगे, हमें क्या परेशानी, हम क्यों इकट्ठा करेंगे। हाँ, तो ये त्यौहार ऐसे त्यौहारों की नियम था। तो पहले जमाने में ऐसे हुआ कभी राजस्थान में किसी राजा, कोई राजा रहा नहीं, तो पुराने जमाने राजा नहीं रहता था तो उसकी पत्नी रानी होती थी, महारानी, वही राज करती थी। तो महारानी तो राज कर रही थी, लेकिन किसी बाहर से आए हुए उस वक्त किसी और राजा ने उनके ऊपर आक्रमण किया, हमला कर दिया। हाँ, वार, लड़ाई करने के लिए आया, तो उस स्त्री ने पड़ोसी और क्षत्रिय राजा को रक्षा के लिए भाई बनाया, जो उसका भाई नहीं था, उसका भाई नहीं था, उसका कोई रक्षा करने वाला नहीं था, तो उसने पड़ोसी दूसरे क्षत्रिय राजा को जाके कहा कि मैं आपको भाई बनाती हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपको भाई बनाती हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। और उस दिन से इसका नाम हो गया बहन भाई से रक्षा मांगती है, और एक बंधन में भाई बहन के बंधन में बंध जाता है, और उसकी रक्षा के लिए वो अपनी सेना लेकर आया, अपनी बहन की उसने रक्षा की। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रामा लिखा हुआ है भारत साहित्य में, सनातन साहित्य में, कि रक्षाबंधन का मतलब जो भाई जिसका नहीं है लेकिन केवल एक धागे के मर्यादा में वो भाई बन जाता है और उसके लिए उसकी रक्षा करता है। तो वैसे हम सब आपस में भाई हैं। क्यों हम सब आपस में भाई हैं? क्योंकि हमारा पिता तो एक ही है। हाँ, हमारा पिता कौन है? भगवान हम सबका पिता है। इस दुनिया में भगवान कहते हैं आम बीज प्रदा पिता, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं आपका पिता हूं, और हम भी मंदिर में जाके भगवान को कहते हैं तुम्हें वो पिता चे माता, तुम्हें तुम्ही हमारी माता पिता, हम कहते हैं कि नहीं कहते? तो जब हमारा ही भगवान माता पिता हमारा भगवान है, तो फिर हम आपस में क्या हुए? भाई हुए ना। तो हम सब भाई हुए आपस में, लेकिन फिर भी हम आपस में लड़ क्यों रहे? हम भाई हुए आपस में, इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है। असल में सही माना में भगवान ये नहीं कहता है कि मैं किसका पिता हूं, कहते मैं सर्व जीवों का पिता हूं, आत्मा का पिता है भगवान। हाँ, परमात्मा आत्मा का पिता है, कृष्ण आत्मा का पिता है। तो आत्मा तो स्त्री की और पुरुष की अलग नहीं होती है। असल में स्त्री हो या पुरुष हो, ये तो शरीर का नाम है, अंदर जो आत्मा है वो तो भगवान की शक्ति है, और शक्ति सारी स्त्री होती है, शक्ति स्त्री को बोलते हैं। तो पुरुष भी स्त्री भी ये सब भगवान की शक्ति है। तो हम सब एक रिश्ते से भाई हैं आपस में, क्योंकि हमारा पिता एक भगवान है। ये रिश्ता हम भूल गए हैं, इसलिए हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दुनिया में दुनिया को बांट रहे हैं, लकीर निकाल के कि ये देश तुम्हारा, ये देश मेरा, ये घर हमारा, ये घर तुम्हारा, और ये धरती किसकी है? धरती को माता बोलते हैं, धरती को माता बोलते हैं। हमारे धर्म में जहां 7-8 माताओं का वर्णन है, वहां धरती माता है, गाय माता है, तो धरती माता है। तो हमारा पिता कौन है? भगवान। तो धरती माता है तो क्या हुई? भगवान की पत्नी हुई, हुई कि नहीं हुई? और वैसे भी धरती को विष्णु की पत्नी कहते, पृथ्वी विष्णु पत्नी है, इसको भूदेवी बोलते हैं, भूदेवी, ये विष्णु पत्नी है। अब हम बेटे, ये हमारी मां भगवान की पत्नी, इसको हम काट के तोड़ के इधर मेरा इधर तेरा कर रहे हैं, ये अच्छा काम है? हाँ, हम उसकी सेवा करने के बजाय उसको तोड़ मोड़ रहे हैं, इसलिए दुनिया दुखी है, दुनिया के लोग परेशान इसलिए हैं। कि वो भगवान की संपत्ति को अपनी मानते, भोग करना चाहते हैं पृथ्वी का, और दूसरी भगवान की पत्नी का नाम तो सबको आता है ना, क्या है नारायण की पत्नी का नाम क्या है, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी भी माता है ना, क्योंकि भगवान हमारे पिता है तो लक्ष्मी माता हुई कि नहीं हुई, तो जगत की माता है। और धन दुनिया में पैसे को क्या बोलते हैं, लक्ष्मी, पैसे को भी लक्ष्मी बोलते हैं ना, हाँ, तो लक्ष्मी का पति कौन है, नारायण, गोविंद कृष्ण राम, और इस दुनिया वाले लक्ष्मी का पति बनना चाहते हैं। और लक्ष्मी हंसती है मूर्खों, पृथ्वी हंसती है, ये राजा कहेगा ये मेरी, ये धरती मेरी है, मैं इसका राजा हूं, मैं इसको भोगूंगा, हंसती है, तुमसे पहले कितने आए मर गए, फ्रेंच आए चले गए, कोई पूछता नहीं, अंग्रेज आया चला गया, फिर एक और आया, फिर दूसरा आया, सब चले गए, कोई राजा रहा क्या, पृथ्वी अभी तक पड़ी है, कोई राजा है क्या, मर गए कि नहीं मर गए, रिश्ते को भूल गए, बेटे के बजाय पति बनने का प्रयास कर रहे। राम को छोड़कर सीता को उठा के लेके और भोगना चाहे वो कौन, रावण, ऐसा किसने किया था, रावण ने राम को वन में भटकने के लिए छोड़ दिया, जो उसकी सेवा में सीता थी उसको उठा के और कहता है तुम मेरी रानी बन जाओ। और रावण किसका राजा था, लंका का, और लंका की दीवारें सोने की थी, हमारे कान में डालने के लिए 10 ग्राम सोना नहीं है, और रावण के पास सोने की लंका की दीवारें थी, लेकिन एक गलती की, राम की पत्नी लक्ष्मी को भोगना चाहा, तो परिणाम क्या निकला, सोने की लंका समाप्त हो गई। ये एक भगवान ने दुनिया में बड़ा उदाहरण देके रखा है, बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, कि जो लक्ष्मी को भोगने का प्रयास करेगा और राम का भजन नहीं करेगा, नारायण का भजन नहीं करेगा, सीता को भोगने का प्रयास करेगा, तो रावण की तरह नाम निशान मिट जाएगा। और रावण का अर्थ क्या है, जो दूसरों को रुला दे, दूसरों को रुलाए मतलब रोने, रोना है, उसको देख के लोग रोए, रावण ऐसा था जहां आता था लोग रोने लगते थे, तो इस वक्त भी दुनिया के लोग ऐसा चीजों का भाव बढ़ा रहे हैं कि घर में रोना आता है, कहां जाए, चारों ओर से लक्ष्मी को लोग भोग रहे हैं और नारायण का पूजा नहीं कर रहे, तो ये रिश्ते हम भूल गए हैं कि हम भगवान हमारे पिता हैं, धरती हमारी माता है, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं पिता हूं, तो इसको सिखाने के लिए ये हमारा रिश्ता फिर वापस हमको याद कराने के लिए, स्मृति में लाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान क्यों अवतार लेते हैं दुनिया में, क्योंकि वो हमको दोबारा एक बार फिर याद दिलाते हैं, हमारे को रिमाइंड कराते हैं कि तुम मुझको भूलकर दुनिया में दुखी हो रहे हो, मेरी सारी शक्ति संपत्ति को भोगने का दुस्साहस और दुप्रयास करके दुखी हो रहे हो, तुम मेरे बेटे बन जाओ, तो लक्ष्मी तुम्हारी माता है, उसकी गोद में खेलो, तुम उसके पति नहीं बन सकते हो, तुम्हारी ये गलती है। तो भगवान सिर्फ आते हैं इस दुनिया में हमको सावधान करने के लिए, हमको समझाने के लिए, हमको एक और अवसर देने के लिए, एक मौका देने के लिए, एक चांस देने के लिए, कि हम फिर ये जान जाएं कि असल में हमारा पिता और माता सब कुछ भगवान है, तो मेरा घर भी भगवान के चरणों में है, इस दुनिया की कोई चीज सदा के लिए हमारे साथ रहेगी नहीं, ये सच है कि झूठ है। तो भगवान के आने से पहले भगवान अपनी शक्ति, जो भगवान को पहचानने के लिए हमारे को शक्ति चाहिए, बुद्धि को, वो प्रदान करने के लिए अपने से पहले अपने विस्तार को, अपने एक एक्सपेंशन को, पहले अपने से एक से दो हो गए भगवान। जो एक से दो हो गए श्री कृष्ण रह गया, और दूसरा जो बन गया वो बलराम बन गया। तो एक था और एकदम दो हो गए एक से। कोई मुश्किल है एक से दो होना इस दुनिया में? हमको इस दुनिया में एक से दो होने में हम नहीं हो सकते ऐसे। हमको स्त्री पुरुष शादी करेगा, उसके बाद एक बालक होगा, तो दो से एक पैदा होता है। लेकिन भगवान एक से दो नहीं, एक से अनेक हो जाते। भगवान में इतनी शक्ति है, संकल्प करते हैं कि मैं एक से दो हो जाऊं, एक मैं एक से अनेक हो जाऊं। क्यों? बोला अकेला कोई भी आनंद नहीं ले सकता है, अकेला खुश नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई आदमी अकेला रह सकता है? अकेले रहने में कोई सुख नहीं है। हमको हमेशा समाज चाहिए। तो भगवान ने भी एक से अनेक होने की इच्छा की। तो पहले एक से जब दो बने, तो भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी प्रकट हुए, और स्त्री के रूप में भगवान श्री कृष्ण से राधिका प्रकट हुई। बलराम भगवान श्री कृष्ण से पुरुष के रूप में, शक्ति प्रदान करने वाला पुरुष शक्तिमान होता है, स्त्री शक्ति होती है। तो भगवान ने अपने से शक्ति राधा रानी को प्रकट किया, और बलराम जी को अपनी शक्ति का स्वरूप देके प्रकट किया। इन दोनों के द्वारा, बलराम जी की शक्ति से और राधा मां की, जिस राधा से फिर लक्ष्मियां उत्पन्न हुई। एक राधा से बहुत सारी लक्ष्मियां हुई वैकुंठ में। बलराम से विष्णु प्रकट हुआ। बलराम से कारण सागर में सोने वाला विष्णु हुआ, जिसने बहुत से ब्रह्मांड पैदा किए। फिर हर एक ब्रह्मांड में गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु प्रवेश किया, और उसकी नाभि से कमल निकला, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और फिर हर एक जीव के हृदय में, हर एक कण कण में तीसरा बलराम जी का विस्तार, खीर सागर में शयन करने वाला विष्णु हुआ, क्षीरोदकशायी विष्णु। और फिर बलराम जी से शेष बने, जो इस धरती को धारण करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये सब कल का दिन जो है बलराम जी का प्रकट्य दिवस है। बलराम जी से रक्षा की याचना करनी है, बलराम जी से भक्ति के लिए शक्ति की प्रार्थना करनी है। तो कल न तो हमने रक्षाबंधन का बहुत बड़ा उत्सव मनाया, लेकिन आज भक्तों ने यहाँ आपके लिए बलराम जी से रक्षा प्राप्त करने का उत्सव मनाया है। यहाँ आपको बुलाया है, हमको आपको, देखो ये सामने भगवान विष्णु का बहुत सुंदर चित्र है ना, गरुड़ के ऊपर देखो। हाँ, जब लक्ष्मी विष्णु के साथ आती है तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है। किसके ऊपर चढ़ के आती है? और गरुड़ के पंखों, जो पक्ष हैं, फीदर हैं, जो पर हैं, उससे वेद का मंत्र उच्चारण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब साधुओं से, हरि कथा से जो लक्ष्मी प्राप्त होगी, वो लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी। और आपको मालूम है अकेली लक्ष्मी का वाहन क्या है, कैरियर क्या है मालूम है? उल्लू। क्या है? आउल, उल्लू। उल्लू होता है मॉरिशस में? उल्लू है, देखा है किसी ने उल्लू? नहीं मालूम है किसको कहते हैं उल्लू? जो सुबह कुछ नहीं देखता है, सूरज उगता है आंखें बंद कर देगा, अंधेरा है, सूरज नहीं उगा है, अंधेरा है, बोलोगे दिन है, बोला नहीं, कहेगा रात है। और रात को, रात को उल्लू सब कुछ देखता है। आप समझ रहे हो उल्लू किसको बोलते हैं? आउल। आउल बोलते हैं जो रात को देखता है दिन को नहीं देखता, ठीक है। जो लक्ष्मी, जो धन, जो पैसा नारायण के बगैर आएगा वो लक्ष्मी उल्लू के ऊपर चढ़ के आएगी और जिसके पास आएगी उसको अंधा बना देगी, उसको रात में दिन और दिन में रात नजर आएगी। अभी पूरी दुनिया में, अभी पूरी दुनिया में आजकल रात को लोग 12 एक बजे तक जागते हैं, उल्लू हुए कि नहीं हुए, और सुबह 10 बजे तक उठते नहीं है। तो इसी को उल्लू बोलते हैं, और किसको उल्लू बोलते हैं? ये जो पैसा दुनिया ने राम को भुला के, नारायण को भुला के, गोविंद को भुला के उल्लू वाली लक्ष्मी को जो घर में लाया है, खुद उल्लू का पट्ठा बन गया। रात सारी जागता है पागलों की तरह, भोग करता है, घूमता है मार्केटों में, और सारा दिन सोया रहता है। ये उल्लू के ऊपर आई हुई लक्ष्मी का स्वरूप है। आप भाग्यशाली हो, मॉरिशस में कम से कम बाजार 5 बजे आपका दुकान मकान बंद हो जाते। अभी यहां उल्लू वाली लक्ष्मी कम आई है। आप कोशिश करो कि नारायण के साथ लक्ष्मी को घर में बुलाओ, जो गरुड़ के ऊपर आए, साधु संतों के संग से राधा कृष्ण की, सीताराम की उपासना करो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, तो आपका जीवन सफल हो जाए। उल्लू के ऊपर आने वाले लक्ष्मी से दूर रहो। पूरी दुनिया रात को जागती है आजकल, और बच्चा कोई दिन को सुबह नहीं उठता है। उठता है कोई सुबह बच्चा? परेशान होते हो कि नहीं होते हो? क्यों? क्योंकि उल्लू के ऊपर आई हुई लक्ष्मी का प्रभाव है, नहीं उठने देगी। उसको बोलेगा दिन हो गया, बोला नहीं अभी तक सोने दो, रात है। और आदमी का दूसरा आपको प्रमाण दे, प्रमाण का मतलब प्रूफ दे कि आदमी उल्लू कैसे बन गया इस लक्ष्मी को लेकर। घर बनाएगा, मोटे मोटे पर्दे लगाएगा, अंदर रोशनी नहीं आनी चाहिए, मैं उल्लू हूं, अंधेरे में रहूंगा, दिन को नहीं देखना चाहता हूं। ये सच है कि झूठ है? अरे सुबह सूरज उग के आता है कि तुम जागो जागो, हम बोलते हैं पर्दा लगाओ पर्दा लगाओ। ये उल्लू की लक्ष्मी का कमाल है। दुनिया सारी उल्टी चल रही है। अरे हमारे दादे बड़े आदमी हमारे छत के ऊपर रात को सोते थे और सूरज उगने से पहले उठ जाते थे, दिन उगने से पहले उठते थे हमारे बड़े। उसको बोलते हैं जो सुबह सूरज उगने से पहले उठता है वो सतोगुणी व्यक्ति है, साधु है। उस वक्त सूरज उगने से पहले उषा देवी, उषा कहते हैं, सुबह सूरज उगने के पहले समय को उषा बोलते हैं। एक पंखा बनाया है इंडिया में, उसका नाम है उषा कंपनी का पंखा, मालूम है उषा? उसका मतलब जो ठंडी ठंडी हवा दे। सुबह सवेले सूरज उगने से पहले उषा देवी आती है, और उषा देवी एक रथ के ऊपर आती है। रथ में धन है, स्वस्थ है, हेल्थ है, सुख है, शांति है, भक्ति है, लेके बोलती है जो उठे वो ले ले, मुफ्त में बांटती, ले लो ले लो ले लो, जो उठता है उसको मिलता है। और सूरज उगने के बाद वो चली जाती है, जो उठता है उसको न हेल्थ मिलती है, न वेल्थ मिलती है, और न विजडम मिलती है। वो उठ के केवल दो टाइम पशु की तरह पेट भरने का पैसा कमा सकता है, वो पशु जैसा जीवन हो जाता है। तो ये जो भगवान अवतार लेकर आते हैं, हमको एनिमलिस्टिक जो हमारी पशु जैसी धारणाएं हो गई है उनसे मानवता की ओर ले आता है। वेद हमको कहता है अंधकार से प्रकाश में चलो, हाँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की तरफ चलो। और हम कहते हैं नहीं, ज्योति सूरज की है तो भी हम अंधकार में रहेंगे। हम वेद के बिल्कुल उल्टा जा रहे हैं ना। वेद कहता है प्रकाश में चलो, अंधकार से बाहर निकलो, तो हम वेद के विपरीत जाते हैं। और वेद क्या है? वेद भगवान का स्वरूप है। वेद में विशेष क्या है? ओम। ओम वेदों में विशेष है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक् साम यजुर एवच, मैं ओम हूं, ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद मैं हूं। तो भगवान का स्वरूप है वेद, और वेद प्रकाश की तरफ जाने को बोलता है और हम अंधकार की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो बलराम जी हमको प्रकाश में लाना चाहते हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं। बलराम जी की कृपा से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं, अपने पिता को पहचान सकते हैं। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने पिता को नहीं पहचानता है, उसकी माँ कहती है तुम्हारा पिता है, तब उसको पहचानता है। ये सच है कि नहीं? ठीक ऐसे ही लक्ष्मी राधा ये माँ है, ये हमको कहती है कि हमारा पिता कौन है। शास्त्र हमारी माँ है, वेद हमारी माँ है, वो हमको बताती है कि हमारा पिता कौन है। हमने वेद को छोड़ा, शास्त्र को छोड़ा, हमने धर्म को छोड़ा, इसलिए दुनिया के लोग इन सब को छोड़ के बहुत दुखी हो रहे। और प्रभुपाद, प्रभुपाद इस धरती के ऊपर चैतन्य महाप्रभु। और फिर आपको बता दें, आप राम की पूजा करो बहुत अच्छा है, सीताराम की करो, लक्ष्मी नारायण की करो, राधा कृष्ण की करो, लेकिन कल युग में इन सब पूजाओं से हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा और भक्ति में आगे बढ़ना संभव नहीं है, जब तक दयालु, दया के सागर, करुणा के सागर नित्यानंद और चेतन महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त करेंगे। आपको हम सत्य कहते हैं, ये दोनों बहुत दयालु हैं। कृष्ण बलराम हैं, लेकिन भक्त के रूप में आए हैं, भक्ति सिखाने के लिए और कृष्ण का प्रेम मुफ्त में देने के लिए आए हैं। मानव जन्म में अपने पिता को पहचानना चाहते हैं, गोविंद को, गोपाल को जानना चाहते हैं, कृष्ण मधुसूदन को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा चाहिए। ये दोनों बड़े दया के सागर हैं। इनकी कृपा लेकर जब प्रभुपाद गए अमेरिका में, तो ये कृष्ण भाव भक्ति का आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया। नहीं तो भारत में लोग पढ़ पढ़ के पुस्तक, फिर भी कोई भक्त नहीं बन रहा था। सारे भक्तवार भारत के लोग धोती को छोड़ के पैंट पहन के घूमते, पगड़ी को उतार दिया है, टोपी भी नहीं पहनते हैं। क्यों? इतना बंदर में जाते हैं तो भी पैंट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा का, नित्यानंद की कृपा नहीं मिली। और जब प्रभुपाद ने वो कृपा दी, तो अंग्रेज, अमेरिका का, यूरोपियन, रशियन, चाइनीज धोती पहन के आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि कितना अंतर है दोनों में? एक भक्ति देने वाला जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का सेवक है, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आप भक्त लगते हो। देखिए, आप अस्पताल में जाएंगे, जो डॉक्टर, जो सफेद कोट पहना होगा, गले में स्टेथोस्कोप, उसको डॉक्टर कहेंगे, मानेंगे, और आप उसको अपना शरीर दिखाएंगे, वो कहेगा ऑपरेशन, तो आप उसको कहेंगे भले चाकू चलाओ, क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास है कि ये डॉक्टर का ड्रेस पहना हुआ है। तो जब किसी की जो ड्रेस पहनी होती है ना, तो उसका उसकी शक्ति होती है। पुलिस जब अपने पुलिस के यूनिफॉर्म में होता है, तो हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसकी बात को मानते हैं। वो पुलिस वाला साधारण कोई पेंट बुशेट पहन के घूमता रहे तो कोई उसको पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। तो उसकी अपनी ड्रेस में शक्ति है कि नहीं है? पुलिस वाला पुलिस ड्रेस में शक्तिशाली है, वो तो मंत्री की गाड़ी को भी रोक सकता है। रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? अपनी ड्रेस में है तो रोक सकता है। ऐसे ही हमारी अपनी आध्यात्मिक ड्रेस है, धोती, पुरुष की धोती और स्त्री की साड़ी, ये हमारी आध्यात्मिक ड्रेस है। ये जब हम पहनते हैं तो हमारा आत्मा की शक्ति हमारे अंदर आती। इस ड्रेस का प्रभाव दिमाग के ऊपर होता है, ड्रेस का प्रभाव दिमाग के ऊपर होता है।
ये होता है कि नहीं होता है? पुलिस वाले को पुलिस की ड्रेस में ताकत होती है कि नहीं होती है? डॉक्टर को अपने उस डॉक्टरी की ड्रेस होती है, तभी उसकी यूनिफॉर्म की ताकत है। तो यूनिफॉर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये हमारी भक्ति की यूनिफॉर्म है, और इस यूनिफॉर्म में हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा साइंस, बहुत बड़ा मैसेज रखा है। पता है क्या मैसेज है? हाँ, मेरी माँ साड़ी पहना है ना आपने, ये देखो ये ड्रेस है ना साड़ी, ये वैदिक ड्रेस है, ये देवताओं की ड्रेस है। इस ड्रेस में मैसेज क्या है? और ये भक्त पे आप प्रभु जी धोती पहन के आया है ना, अब इस ड्रेस में मैसेज क्या है पता है? मालूम है? साड़ी में जेब है माता जी, धोती में जेब है, नहीं है ना? तो हमारे ऋषियों ने हमको क्या सिखाया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे पास इकट्ठा करने के लिए जेब नहीं है। नहीं तो वो थोड़ी सी छोटी सी बात है, लेकिन इस ड्रेस में त्याग और वैराग का संदेश है, त्याग और वैराग का संदेश है इसमें। इस दुनिया से मरने वाले आदमी को कफन पहनाते हैं, आप बड़े बुजुर्ग बैठे हो, कोई लोगों को यहां से मरते हुए देखा है ना, उसको कफन पहनाते हैं ना दादा, मरने वाले को उसमें जेब होता है? हाँ, उसमें भी जेब नहीं होता। कितनी बड़ा विज्ञान है, कितनी बड़ी साइंस है, कितना बड़ा हमारे संतों का संदेश है इस सिंपल ड्रेस में कि त्याग और वैराग से रहो, और त्याग और वैराग हो तो सब भाई हो जाएंगे। तो मैं कुछ तुम लूंगा नहीं, तुम्हारा कुछ छीनूंगा नहीं, तो फिर तो आनंद, फिर तो सुख से रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? ये तो मेरा तेरा करके मर रहे हैं दुनिया में, और मेरा तेरा ही तो माया है। हम दूसरे को मिलते हैं तब क्या कहते हैं? हमारी संस्कृति में नमस्ते कहते हैं ना, इसका अर्थ क्या है पता है? ना नहीं, मां मेरा, अस्ते मेरा कुछ भी नहीं, इसका अर्थ है मेरा कुछ भी नहीं, ना मां अस्ते, बस सब कुछ भगवान का है, इसका अर्थ ये। और वेद जब ब्राह्मण यज्ञ करता है तो पता है क्या कहता है? इदम गोविंदाय नमः, इदम न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। इस दुनिया में जो मेरा मेरा करता है वो माया है, सब कुछ तेरा है भगवान। ये ड्रेस हमको सिखाती है छोटी सी, लेकिन हम मंदिरों में भी जाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आता। क्यों? देखिए इस वक्त आपकी करेंसी रुपया है, ठीक है, अब ये करेंसी चलेगी, आपके पास 100 रुपये का नोट है मॉरिशस का, बाजार में जाओ तो 100 रुपये की चीज मिलेगी, लेकिन ब्रिटिश के समय का आपके पास कोई रुपया पड़ा होगा है तो उसके ऊपर भी मॉरिशस लिखा हुआ, लेकिन उससे बाजार में कुछ मिलेगा? हाँ है, गवर्नमेंट का नाम ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन वो है 1940 वाला रुपया, चलेगा? है कि नहीं? पुराने थे ना रुपये, कहां गए? किसी घर में पड़े हैं वो रुपये? पड़े हैं, पुराने चलते हैं? नहीं चलते हैं ना, लेकिन उसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट, उसके ऊपर तो मॉरिशस भी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन नहीं चलता, नहीं चलता ना। तो करेंसी कौन सी चलती है? जो करंट है। तो करंट अवतार चेतना महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, वो करेंसी चलती है। बाकी सब कुछ आपके पास है तो भी कुछ एन कैश नहीं हो रहा है, लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, लोग भगवान के भक्त नहीं हो रहे हैं। ये सच है कि झूठ है? केवल एक व्यक्ति 70 साल के प्रभुपाद ने उस नित्यानंद चेतना महाप्रभु की कृपा से अमेरिका जैसे माया के मोह में डूबे हुए नशाई लोगों को धोती कुर्ता तिलक लगा के हरे कृष्ण जपना शुरू करा दिया। है शक्ति कि नहीं शक्ति? कितना बड़ा परिवर्तन आया। वो विदेशी स्त्रियां साड़ी पहन रही हैं गौरव के साथ, तिलक लगा रही हैं, जाके देखो। और हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, क्यों? मंदिर में जा रहे हैं फिर भी छोड़ रहे हैं। ठीक है बाहर जाना है, काम पे जाना है, जो भी सारा आसान ड्रेस है वो पहनो, कम से कम पूजा में मंदिर में जाओ तो अपने वस्त्र पहन के जाओ ना। भगवान देखता है कैसा आ रहा है, धोती पहन के आ रहा है, बोला प्रेजेंट लगा दो, बोला क्या पेंट पहन के आ रहा है, बोला एब्सेंट लगा दो। उधर जो आदमी बेटा एब्सेंट करता है सबको, क्यों एब्सेंट, बोला ड्रेस ही नहीं पहनना आता है, भक्ति कहां से करेगा। आपको ना आपको मालूम है ऑपरेशन थिएटर में वही ड्रेस पहन के जाते हैं जो अस्पताल देती है, अपने घर का ड्रेस पहन के ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाते। हम अभी ऑपरेशन करा रहे थे, उनके पास हमारी साइज का कुर्ता था नहीं, पजामा था नहीं, बड़े परेशान हुए, और मैं कह मैं धोती पहनू, बोला नहीं जा सकते हो, वो बड़ा गाउन हमको बोला तुम ये पहन के जाओ। तो ऐसे ही अभी भी दक्षिण भारत में आप जाएंगे, मंदिर के अंदर जाने से पहले कहेंगे कुर्ता उतारो, इसमें जेब है, नहीं जा सकते हो अंदर, और धोती पहन के आओ। बहुत से मंदिरों में नहीं जाने देते, स्त्री साड़ी में जाएगी, नहीं तो नहीं जाने देते, नेम अभी तक है उधर बना हुआ है ये नेम। तो जब ऑपरेशन थिएटर में वही कपड़े पहन के जाने हैं जो अस्पताल का नेम है, ऐसे मंदिर में भी वो कपड़े पहन के जाना चाहिए जो मंदिर का नेम है। वहां भी ऑपरेशन कराने जाते हैं मंदिर में, दिल का ऑपरेशन कराने जाते हैं, दिल में बहुत काम क्रोध लोभ मोह है, बहुत कचरा है, बहुत द्वेष है, बहुत बुराइयां हैं। भगवान के पास बलराम जी का विशेष काम क्या है, हाथ में हल है, हल है हाथ में, और भक्त के दिल के अंदर से कचरे को ऐसे खींच के बाहर निकालता, लेकिन कब निकालेगा, ऑपरेशन में ऑपरेशन की ड्रेस में जाएंगे। तो गौरव के साथ हमको ये ड्रेस पहननी चाहिए, अपने वस्त्र के ऊपर हमारे को स्वाभिमान होना चाहिए, वी शुड बी प्राउड। मुझे बताया यहाँ एक ऑफिसर हमारा मित्र है, रेवेन्यू का हेड, बहुत पुराना हमारा लाल साहब, बोला कम से कम ये देश ऐसा है जिसमें एक मर्द धोती कुर्ता भी पहन के आता है तो ऑफिस में इनकम टैक्स का ऑफिसर आ सकता है, स्त्री साड़ी पहन के आए, सिंदूर लगा के आए, तो कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन मॉरिशस में ये सुविधा है। मॉरिशस में अभी तक भी आपके पूर्वजों का इतना तपस्या उन्होंने की है यहां कि अभी तक यहां संस्कृति ऐसी बची हुई है, और ये संस्कृति आप अब नहीं बचाओगे तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हो रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का जो आक्रमण हो रहा है, ये जो बच्चे हैं ये संस्कारहीन हो जाएंगे, इनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम अपनी संस्कृति, आपके बुजुर्गों ने अपनी भाषा को भी संभाल के रखा था, अपनी पगड़ी को भी संभाल के रखा था, आपके दादाजी क्या पहनते थे आपको याद है, बाबा दादा का फोटो घर में होगा ना, बाबा दादा का फोटो होगा घर में ना, पगड़ी थी नहीं थी, धोती थी नहीं थी, था ना, और बोलते थे अपनी भाषा में, राम राम करते थे कि नहीं करते थे, गुड मॉर्निंग पढ़ते, बोनजू बोलते थे, बोनजू तो नहीं बोलते थे ना, राम राम बोलते थे, बोनजू बोलते थे, क्या फर्क पड़ेगा, राम राम बोलने से एक बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाएगा, वो हजार विष्णु के नाम के बराबर, बोनजू से क्या होगा, बोनजू कुछ नहीं, बोनवी काम खत्म। संस्कृति को मत भुलाओ, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आपको भगवान की कृपा को ग्रहण करके भक्ति करनी चाहिए। आप अपने के लिए ना करो, बच्चों के लिए करो, जैसे बच्चों को टीका लगाते हो कि नहीं, पोलियो के ड्राफ्ट पिलाने जाते हो कि नहीं जाते हो, माता जी लोग क्यों पिलाते हो बच्चों को पोलियो का, क्यों पिलाते हो जाके अस्पताल में, टीका क्यों लगा के आते हो, खसा डीपीटी का, डिप्थेरिया ट्यूबरक्लोसिस टेटनस टीका क्यों लगाते हो, बोलो पोलियो का ड्राफ्ट क्यों पिलाते हो, मेरी माँ हाँ, कौन सी बीमारी होती है पोलियो से, टांग टेढ़ी हो जाती है, टांग ऐसे चल नहीं सकता है, टांग टेढ़ी का डर है, पोलियो तीन बार पिलाने जाते हो है ना, उसका दिमाग नहीं खराब हो जाए उसके लिए कोई दवा है क्या, उसका दिमाग खराब हो जाए मां बाप का आज्ञा नहीं माने, वो लड़कियों के साथ घूम के बदमाशी करे शराब पिए, उसके लिए कोई इलाज है आपके पास, डॉक्टर के पास कोई पोलियो का ड्राप है हाँ, बच्चे का दिमाग खराब नहीं है उसका कोई इलाज है? नहीं है, ये इलाज है। यहां बच्चों को लाओ, गीता रामायण पढ़ाओ, ये पोलियो के ड्राप की तरह उसका दिमाग खराब होने कैसे बचाएगा? ये संस्कार और संस्कृति बचाएगा, ये बच्चा शिक्षा दिया हुआ आपकी सेवा करेगा, और सेवा ही हमारा धर्म है। और ये सेवा का धर्म सिखाने के लिए बलराम जी आए थे। बलराम जी सेवा का भगवान है, जो हमको सेवा सिखाते हैं। तो ये कोई धर्म का शो नहीं है कि हम मंदिर जाएंगे, घंटी बजाएंगे, अब नवरात्र आए हैं, चलो माता जी के पास। क्या करेंगे माता जी के पास? दुर्गा माता जी का काम क्या है? इस दुनिया को जेल बोलते हैं, और जेल की जेल सुप्रिटेंडेंट है दुर्गा माता जी। अब पूजा करने जाओ जेल सुप्रिटेंडेंट, एक आदमी जेल में हो और जेल सुप्रिटेंडेंट के जाके प्रार्थना करे और उसको कहे मुझे जेल के अंदर एसी लगा के दो, मुझे जेल के अंदर जो है वो अखबार भेज दो, मुझे जेल में फोन का मोबाइल फोन रखने दो, तो आप क्या कहोगे? बुद्धिमान आदमी है हाँ? अरे क्या कहना चाहिए उसको? जेल से निकालो, ये कहना चाहिए ना हाँ? सारे लोग जाते हैं देवी की पूजा करने और क्या बोलते हैं? हमारा घर बन जाए, हमारे लड़के की शादी हो जाए। इसका मतलब इस जेल में रहना चाहते हैं, हमारे जेल के अंदर थोड़ी सुविधाएं बढ़ा दो हाँ, थोड़ी और फैसिलिटीज बढ़ा दो हाँ, हमारा जेल के। तो ये बुद्धिमानी है क्या हाँ? इज इट इंटेलिजेंस टू आस्क पुलिस जेल सुप्रिटेंडेंट टू प्रोवाइड अस फैसिलिटीज? अच्छा तो ये है कि हमको बाहर निकालो। तो पूजा तो करने सब जाते हैं लेकिन जानते नहीं है क्यों जाते हैं। वैसे भी लोग मंदिर में क्यों जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? मांगने जाते हैं। क्यों मांगने जाते हैं? कुछ है नहीं है इसलिए मांगने जाते हैं। आना सच्चा झूठ बोल रहा हूं। और दूसरा क्या काम करते हैं मंदिर में जाके लोग? भगवान हमारी रक्षा करो, अपने को बचाने के लिए जाते हैं। बीमार है, बेटा नहीं है, कोई तकलीफ में, तो एक तो भगवान हमारा जो कुछ हमारे पास है उसको बचा के रखो, और जो हमारे पास नहीं है वो हमको दो, इसीलिए जाते हैं ना। सच है कि झूठ है? अब मैं दुबई से आ रहा हूँ और दुबई में बहुत बड़ा, अब कहते हैं दुबई में कोई भिखारी नहीं है, बोलते हैं कि कोई भिखारी नहीं है। और मैंने देखा हर रोड के ऊपर चार चार भिखारी खड़े हैं। बोला ये कौन से भिखारी है? मैं उनको बोला वो पार्किंग वाले ये लो, बड़े बड़े ऐसे पिलर लगे हैं, उसमें 2 रुपये डालो, अंदर से कूपन निकलेगा, तब तुम्हारी गाड़ी खड़ी होगी। तो आदमी भिखारी नहीं है, मांगता नहीं है, लेकिन एक डखंबा खड़ा किया है, भिखारी सबको बोलता इधर आओ 2 रुपया दो। और इतने भिखारी हैं कि आप ढूंढते हो कि भिखारी कहां है कि भिक्षा दें, लेकिन ये पैसा कहां जाता है? गवर्नमेंट ना, इसका मतलब भिखारी कौन है? गवर्नमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट भिखारी है। इसका मतलब जो उधर काम कर रहे हैं वो किसके नौकर है? भिखारी के नौकर है। भिखारी के नौकर हुए कि नहीं हुए? यहां भी मॉरिशस में भिखारी नहीं मिलता है कोई, लेकिन पोर्ट लुइस में जाओ तो भिखारी है, बड़ा है, डालो पैसा डालो। अब समझ में क्या कहना चाह रहा हूं कि क्या स्थिति कैसी हो रही है? हरे कृष्ण, बात कौन सी करने जा रहा था? एक बार बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो कौन सा मैं कोई बात करने जा रहा था? क्या बात करने जा रहा? क्या भिखारी हो गया और वो हो गया दुबई, और क्या बात? कोई पॉइंट था मैं बताते, वो दुबई बीच में आ गई। हाँ, मंदिर में मांगने जाते हैं या जो है उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अच्छा पहले ये मैं पूछता हूं, जो मांगने जाते हैं वो मिलता है क्या मंदिर से? हाँ, जो मांगने जाते हैं वो सब मिलता है क्या? ऐसे मिलता तो सारे लोग आज सुखी हो जाते, सारे लोगों के पास अमेरिका में बैठे होते सारे, नहीं मिलता है ना, ये सच है झूठ है? जो मंदिर में मांगने जाते वो सब नहीं मिलता है ना, और जो बचाने के लिए प्रार्थना करता है वो बचता है क्या? हमारा दादा कभी नहीं मरे, बचेगा क्या? इसका मतलब इतना सारा मंदिर में जाने के बाद भी जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है, और जो बचाना चाहते हैं वो बचता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि मा, तुम मेरे भक्त बन जाओ, तुम्हारे पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं दूंगा। वो बोल रहा है हाँ मैं दूंगा, हम उसका भजन नहीं कर रहे हैं। हम कैसे मंदिर में जाते हैं आपको सच बताएं? हे भगवान ए 10 रुपया ले लो, हम आपको चढ़ाते हैं, हमारा घर बना दो, लोन दिला दो। लोन कितने का? बोला 5 मिलियन। 5 मिलियन का लोन चाहिए, 10 रुपया भगवान को देते हो? ये भगवान से धोखेबाजी है कि नहीं है? ये पूजा का तरीका है क्या? इसको बोलते कुत्ता दे के हाथी मांगना, दो कुत्ता और कहोगे हाथी दो हमको। इसलिए मंदिरों के अंदर जाने वाले के जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। भगवान की सेवा नहीं मांगने जाते हैं, भगवान को सेवा में लगाने जाते हैं, ये काम करके आओ वो काम करके आओ। इसलिए सेवा के भगवान चैतन्य महाप्रभु के परिकर नित्यानंद साथी नित्यानंद बलराम जी का जब तक कृपा नहीं होगा तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हमारी आपको प्रार्थना है इस बलराम पूर्णिमा के दूसरे दिन बलराम जी का, आज बलराम जी के वहां आनंद उत्सव की तरह बहुत बड़ा उत्सव होगा, तो उस उत्सव में आप सब उससे भगवान की सेवा मांगो। भगवान की सेवा कैसे करें ये मांगो, वो शक्ति मांगो, हृदय के अंदर से द्वेष निकले, हम सब सबसे प्रेम करें, भगवान के बने, श्री कृष्ण का भजन करें, राम का भजन करें, ये मांगो, एक वो मिलने से सब सुख हो जाएगा। तो आपको हमारी विनती है, ये कृष्ण भावना अमृत संघ श्री प्रभुपाद की कृपा से लोगों को सुखी बनाने के लिए, लोगों के दुख को से मुक्त करने के लिए, लोगों को सत्वगुण में लाने के लिए, लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए शिक्षा दे रहा है। ये क्लासेस यूनिवर्सिटी का काम करते हैं जहां आत्मा की शिक्षा दी जाती, आप इसका लाभ लीजिए, अपना जन्म सफल कीजिए। हरे कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु शक्ति प्रभु का धन्यवाद, हमको यहाँ सेवा के लिए अवसर दिया। यो तो इनफ टाइम हो गया, अब थोड़ा सा आपका किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? माता जी अपनी साड़ी को पक्का करके रखो, ये आपका बहुत अच्छा ड्रेस है, आपका मंदिर में प्रेजेंट लगता है, पुरुषों का सबका एब्सेंट है।